بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے بی اے بی ایس سی بی کام جدید نصاب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 76 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 8. انتخابات کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے صدر اسحاق خان نے اکثریتی پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو کو وزارت تشکیل دینے کی دعوت دی. بینظیر بھٹو نے 1 دسمبر 1988 کو بطور وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا. حلف اٹھانے کے بعد بے نظیر نے اپنی حکومت کے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کیا جائے گا, بے گھروں کو گھر اور بے روزگاروں کو روزگار ملے گا, بھوک اور افلاس کا خاتمہ ہوگا, سیاسی قیدیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا, خواتین کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے, پریس کو مکمل آزادی دی جائے گی, اسلامی ورثے کا تحفظ کیا جائے گا, طلبہ اور مزدور یونینوں پر سے پابندی ختم کر دی جائے گی, چین روس اور امریکہ سے بہتر تعلقات قائم کیے جائیں گے. بینظیر نے اپنی نامزدگی کے 10 روز بعد قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دیا. صدارتی انتخابات 6 دسمبر 1988 کو صدر مملکت کے لیے انتخاب ہوا. غلام اسحاق خان بھاری اکثریت سے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے. 12 دسمبر 1988 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب 3 دسمبر 1988 کو اسلامی جمہوری اتحاد کے امیدوار وسیم سجاد بھاری اکثریت سے سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے. بلوچستان اسمبلی کی تنسیخ 15 دسمبر 1988 کو بلوچستان کے گورنر جنرل ریٹائرڈ محمد موسیٰ نے وزیر اعلیٰ میر ظفر اللہ جمالی کے کہنے پر بلوچستان کی صوبائی اسمبلی توڑ دی, لیکن بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم سے صوبائی اسمبلی بحال ہو گئی اور نواب اکبر بگٹی نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا. مرکز اور پنجاب میں محاذ آرائی پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت قائم ہوئی تھی اور میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے. مرکز اور پنجاب میں محاذ آرائی شروع ہو گئی. وزیر اعلیٰ نے 9 نکاتی فارمولہ پیش کیا مگر مرکزی حکومت نے اسے مسترد کر دیا. ایم کیو ایم سے چپکلش پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت ایم کیو ایم کے اتحاد سے وجود میں آئی تھی, اس لیے اتحاد کے وقت جو معاہدے طے پائے ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان حالات کشیدگی اختیار کر گئے. بینظیر حکومت کی برطرفی آخر کار صدر اسحاق خان نے اپنے صوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 6 اگست 1990 کو بینظیر حکومت کو برطرف کر دیا. بینظیر حکومت پر بدعنوانی, اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال اور جمہوری روایات کو پامال کرنے کے الزامات لگائے گئے. صدر نے ملک میں ہنگامی حالات نافذ کر دی اور غلام مصطفیٰ جتوئی کو بطور نگران وزیر اعظم مقرر کر کے 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا. نواز شریف کا پہلا دور حکومت اکتوبر 1990 کے عام انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کل 206 نشستوں میں سے 105 اور پیپلز ڈیموکریٹک کو 45 نشستیں ملی. اس طرح اسلامی جمہوری اتحاد کے صدر میاں نواز شریف نے 6 نومبر 1990 کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا. انہوں نے اپنی نشری تقریر میں کہا کہ ملک میں صنعتی ترقی کو تیز کیا جائے گا, کشمیریوں کو سیاسی و اخلاقی امدادی مدد جاری رکھی جائے گی, قومی خزانے پر بوجھ بننے والی صنعتیں نجی شعبوں کے حوالے کر دی جائیں گی, احتساب کا عمل جاری رکھا جائے گا, اسمبلیوں میں خواتین کی نشستیں بحال کی جائیں گی, روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے, فوری انصاف کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی, امریکہ بھارت روس اور چین سے تعلقات مزید بہتر بنائے جائیں گے, ایران ترکی اور عرب سے تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا, سرکاری ملازمین کے اسکیل 1 سے 15 تک 200 روپے مہنگائی الاؤنس کا اضافہ کیا گیا. نواز شریف حکومت کے اقدامات قومی مالیاتی کمیشن کا قیام 20 اپریل 1991 کو وزیر اعظم نواز شریف نے قومی مالیاتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، اس کی آئینی ضرورت تھی. نجکاری کمیشن کا قیام 22 جنوری 1991 کو نجکاری کمیشن قائم کیا گیا، اس کا مقصد سرکاری تحویل میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کرنا تھا. زرعی پالیسی کا اعلان، حکومت نے 14 مئی 1991 کو زرعی پالیسی کا اعلان کیا. اس پالیسی کے مقاصد خود انحصاری کی طرف قدم، معاشرتی مساوات کے قیام، پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ، برآمدات کو وسیع کر کے ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا تھا. شریعت بل کی منظوری، 16 مئی 1991 کو شریعت بل کی منظوری قومی اسمبلی نے دی اور 28 مئی 1991 کو سینٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی. بیت المال کا قیام، بیت المال کا قیام 6 فروری 1991 کو عمل میں آیا. بیت المال کا قیام ایک اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کے سلسلے میں حکومت کی کاوشوں کی ایک کڑی تھا. تعزیرات پاکستان میں ترامیم کا آرڈیننس، 4 جنوری 1991 کو صدر پاکستان نے تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت اقدام سے لے کر قتل عمد تک کی تمام دفعات کو قرآن و سنت کے تابع کر دیا گیا. خود روزگار اسکیم، 12 اپریل 1992 کو وزیر اعظم نے خود روزگار اسکیم کا اعلان کیا. اس اسکیم کے تحت 50,000 روپے، 1.5 لاکھ روپے اور 3 لاکھ روپے کے قرضہ جات شروع کیے گئے، جن پر مارک اپ کی شرح 10% رکھی گئی. تعمیر وطن پروگرام، جون 1991 میں تعمیر وطن پروگرام کا آغاز کیا گیا. یہ پروگرام سہولتوں کا ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے مترادف قرار دیا گیا. لاہور تا اسلام آباد موٹر وے کا سنگ بنیاد، 11 جنوری 1992 کو وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور تا اسلام آباد موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موٹر وے ملک کی خوشحالی کے نئے راستے کھول دے گی. پاکستان موٹر وے ملک کی پہلی قومی شاہراہ ہوگی جو ملک کے چاروں صوبوں کو ایک دوسرے سے ملا دے گی. وزیر اعظم کی ٹرانسپورٹ اسکیم، خود انحصاری اسکیم کے تحت وزیر اعظم نے 5 ستمبر 1992 کو پبلک ٹرانسپورٹ پروگرام برائے خود روزگار کو مزید فعال اور آسان بنانے کے لیے کئی احکامات جاری کیے، جن پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی. اس پروگرام کے تحت کل قیمت کا 15% کے بجائے صرف 10% جمع کرا کے ٹیکسی، بس، وین، ٹرک، پک اپ اور موٹر رکشہ بک کرائے جا سکتے تھے. قیمت کا باقی 90% بینک 10 دن کے اندر مہیا کرنے کا پابند تھا. پاک سوزوکی کمپنی کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی پیداوار کا زیادہ سے زیادہ ٹیکسوں کے لیے مخصوص کرے. اس اسکیم کا اجرا وزیر اعظم نے 22 فروری 1992 کو کیا تھا. سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب، 21 مارچ 1991 کو اسلامی جمہوری اتحاد کے وسیم سجاد چیئرمین اور نور جہاں پانیزئی ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے. میاں نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے مابین اختلافات، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز کے انتقال کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرنے کے لیے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. تاہم جنرل وحید کاکڑ کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا گیا، لیکن صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے. صدر غلام اسحاق خان کی 5 سال کی مدت پوری ہونے والی تھی اور نواز شریف 8ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے. ان حالات میں سیاسی مخالفین نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیا. صدر اسحاق خان نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر 18 اپریل 1993 کو نواز شریف حکومت کو برطرف کر دیا اور میر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا. عدالت عظمیٰ کا فیصلہ، قومی اسمبلی اور وزارت عظمیٰ کی بحالی، 19 اپریل 1993 کو قومی اسمبلی کے اسپیکر گوہر ایوب خان نے قومی اسمبلی کی برطرفی کو کورٹ میں چیلنج کر دیا. بعد میں نواز شریف نے بھی قومی اسمبلی کی بحالی کی اپیل کر دی. سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا. जस्टिस नसीम हसन शाह ने ये फैसला सुनाया। 27 मई को नवाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल किया। सूबाई असम्बलियों के तहलील। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 27 मई को हजब इख्तलाफ की जमातों ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली 29 मई और सरहद असम्बली 30 मई को तोड़ दी गई। 29 मई को गुलाम हैदर वाइन ने पंजाब असम्बली तोड़ने के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। 4 जनवरी 1993 को लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने असम्बली मुअत्तल करने का हुक्म गैर कानूनी करार दिया और आर्जी तौर पर असम्बली बहाल करने का हुक्म दिया। इस दौरान मंजूर वट्टू जो कि वजीर आला पंजाब थे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की कोशिश की गई। 28 जून को लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने पंजाब असम्बली बहाल करने का फैसला सादिर किया। इस फैसले के 7 मिनट के बाद वजीर आला पंजाब मंजूर वट्टू ने गवर्नर को असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया। सुनाचा पंजाब असम्बली फिर तहलील हो गई। उधर पिशावर में सरहद असम्बली को तहलील करने के इकदाम को पिशावर हाई कोर्ट दुरुस्त इकदाम करार दे चुकी थी। हिजबे इख्तलाफ का लॉन्ग मार्च। 15 जुलाई 1993 को पाकिस्तान में हिजबे इख्तलाफ की जमात पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान किया। तर्जुमान ने कहा कि लॉन्ग मार्च के अल्तवा का फैसला मुल्क के वसी तर मफाद में किया गया है। बेनजीर ने कहा कि लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद की अपील पर किया गया है, जिन्होंने एक मुकम्मल ताबुन का यकीन दिलाया है। नवाज शरीफ हुकूमत की दोबारा बरतरफी। एक अरसे से जारी सियासी बहरान को हल करने के सिलसिले में बिलाखिर फौज के तावुन से 17 जुलाई 1993 को एक समझौता तय पाया, जिस पर सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ ने दस्तखत किए। इस दस्तावेज में वजीर आजम की तरफ से सदर मुमलिकत को असम्बली तोड़ने की एडवाइस, सदर मुमलिकत के इस्तीफा और अहम इंतखाबात के टाइम टेबल की जुजियात भी दी गई। मुल्क को चलाने के लिए सेनेट के चेयरमैन वसीम सज्जाद को कायम मुकाम सदर और मुईन कुरैशी को निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया गया। सदर ने नए इंतखाबात के लिए 16 अक्टूबर कौमी असम्बली और 19 अक्टूबर सूबाई असम्बलियों की तारीखें मुकर्रर की। निगरान वजीर आजम मुईन कुरैशी का दौर। 18 जुलाई 1993 को मुईन कुरैशी निगरान वजीर आजम मुकर्रर हुए। उन्हें यह ओहदा इसलिए सौंपा गया ताकि वो मुल्क में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवा सकें। 19 अक्टूबर 1993 को इंतखाबात के नए नतीजे आ गए तो उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा बेनजीर के हवाले कर दिया और खुद अमरीका चले गए। बेनजीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत। 19 अक्टूबर 1993 को बेनजीर भुट्टो ने दूसरी मरतबा वजारत उज़्मा का हलफ उठाया। पंजाब और सिंध में पीपल्स पार्टी और सरहद और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग और उसकी हलीफ जमातों ने हुकूमत बनाई। 17 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली के स्पीकर और पीपल्स पार्टी ही के सैयद जफर अली शाह ने डिप्टी स्पीकर के ओहदों का हलफ उठाया। सदारती इलेक्शन। 13 नवंबर 1993 को सदारती इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार फारूक अहमद लगारी कामयाब हो गए। उन्होंने सदर पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। सेनेट के इंतखाबात। 2 मार्च 1994 को सेनेट के इंतखाबात हुए। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार वसीम सज्जाद चेयरमैन और जमहूरी वतन पार्टी के अब्दुल जब्बार डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। सरहद असम्बली तहलील। 25 फरवरी 1994 को सदर फारूक अहमद लगारी ने सरहद असम्बली मुअत्तल कर दी और वजीर आला सैयद साबिर अली शाह को बरतरफ कर दिया। 21 अप्रैल 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने साबिर अली शाह को दोबारा बहाल कर दिया। साबिर शाह एतमाद का वोट न ले सके, इस तरह 24 अप्रैल को आफताब शेरपाओ ने वजीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। प्रेसलर तरमीम का खात्मा। 20 सितंबर 1995 को अमरीकी सेनेट ने पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां उठाने के हक में वोट दिया और कहा कि पाकिस्तान के लिए फौजी हथियारों की बहुम रसानी को मुमकिन बनाया जाए। इस जिम में ब्राउन तरमीम मंजूर की गई। अमरीकी सेनेट ने ब्राउन तरमीम 45 के मुकाबले में 55 वोटों से मंजूर की, जिससे प्रेसलर तरमीम की पाबंदियां नरम हो गईं और इस बिना पर पाकिस्तान को $70 मिलियन की इमदाद मिल सकेगी। हुकूमत ने इसे एक बड़ी अहम कामयाबी करार दिया। 6 अक्टूबर 1995 को अमेरिका ने पाकिस्तान को फौजी हथियारों की तरसील के सिलसिले में किए गए एतराज को मुस्तरद कर दिया। 16 अप्रैल 1996 को अमेरिका ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि अब वो F-F-16 तैयारों की दी हुई 368 मिलियन डॉलर्स की रकम वापस ले सकेगा। ताज कंपनी के मुतासरीन की इमदाद का जामे मंसूबा। 7 दिसंबर 1993 को कौम के नाम अपने खिताब में वजीर आजम पाकिस्तान मिसिस बेनजीर भुट्टो ने ताज कंपनी के मुतासरीन की मदद के लिए जामे मंसूबे का ऐलान किया। ऐलान करदा मंसूबे में कहा गया कि 25,000 रुपये के खातेदारों को तमाम रकम नकद अदा की जाएगी, 50,000 रुपये तक के खातेदारों को 20% बॉन्ड्स की शक्ल में और 50,000 रुपये से जायद के दावेदारों को 40% रकम बॉन्ड्स की शक्ल में अदा की जाएगी। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक ताज कंपनी के नाम 2.5 करोड़ रुपए का चेक जारी किया गया ताकि ताज कंपनी के एडिटरों का बोर्ड मुतासरीन को अदायगी कर सके। ब्रिगेडियर इम्तियाज की गिरफ्तारी। अपने दूसरे दौर में बेनजीर ने ब्रिगेडियर इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर बेनजीर हुकूमत के खिलाफ काम करने का इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट की मुस्तकिल आसामियों पर एडहॉक जजों का तकर्रुर। जजों की तकरारी एक अरसे से पाकिस्तान में आर्जी बुनियादों पर की जा रही थी। इस जिम में सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर हबीब अल वहाब अल खैरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 20 मार्च 1996 को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर्जी बुनियादों पर जजों की तकरारी नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के मशवरे के बगैर जजों के तकरार और तौसीख को आइन से मुतसादिम और गैर कानूनी करार दिया जा सकेगा। इसके बाद सदर ने कई जजों को नए ओहदे पर तरक्की लेकर मुस्तकिल कर दिया। कौमी असम्बली की तहलील और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी। सदर फारूक अहमद लगारी ने आइन के आर्टिकल 58B2 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 5 नवंबर 1996 को कौमी असम्बली को तहलील कर दिया और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। मलिक मेराज खालिद को निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया और आम इंतखाबात के लिए 3 फरवरी 1997 की तारीख मुकर्रर की। इंतखाबात 1997 और मियां नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत। फरवरी 1997 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की ने वाज़े अक्सरियत हासिल की और 134 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 18 नशिस्तें हासिल कर सकी। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया। पंजाब में इनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ ने सूबाई वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। नवाज शरीफ के दौर के अहम इकदाम। गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक। 7 अगस्त 1997 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट डालने की इजाजत दे दी। सदर पाकिस्तान का इस्तीफा। 2 दिसंबर 1997 को सदर फारूक अहमद लगारी ने हुकूमत से इख्तलाफात की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नए सदर का इंतखाब। 31 दिसंबर 1997 को मिस्टर मोहम्मद रफीक तारर पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने 1 जनवरी 1998 को अपने ओहदे का हलफ उठाया। कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम का इजरा। नवाज शरीफ ने मुल्क में कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम का इजरा किया। इस स्कीम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइन में 13वीं तरमीम का इजाफा। 1 अप्रैल 1997 को वजीर आजम ने सिर्फ 13 मिनट में कौमी असम्बली से 13वीं तरमीम मंजूर करवा ली। इस तरमीम की रूह से दफा 58(2)(b) मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए सेफ्टी का काम देता था। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह कर रहे थे, ने 2 दिसंबर 1997 को इस पटिशन की समाअत के बाद अबूरी रिलीफ देते हुए सदर के लिए असम्बली तोड़ने का इख्तियार बहाल कर दिया, मगर फौरी तौर पर जस्टिस सईदुज्जमा सिद्दीकी की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया। बाद अज़ां इस तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। 14वीं तरमीम। ये तरमीम कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। इस तरमीम का मकसद फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना था। चौदहवीं तरमीम ने सियासी जमातों के सरबराहों को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर रुकन को असम्बली से बाहर करने के लामहदूद इख्तियार दे दिए। 24 अक्टूबर 1997 को नवाबजादा नसरुल्ला खान ने चौदहवीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसके नतीजे में ये तरमीम 30 अक्टूबर 1997 को मुअत्तल कर दी गई। 15वीं तरमीम 28 अक्टूबर 1998 को कौमी असम्बली में वजीर आजम नवाज शरीफ ने आइन में 15वीं तरमीम का बिल पेश किया, जो दो तिहाई अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकरीरी का मसला और चीफ जस्टिस की बरतरफी। अगस्त 1997 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 16 से 17 करने के लिए हुकूमत से कहा, लेकिन 21 अगस्त 1997 को सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 16 से कम करके 12 कर दी। उसी रोज पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशवरा किए बगैर खसूसी अदालतों के लिए 11 जजों का तकरर किया। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सदर के इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कम की गई थी। 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जजों की तादाद कम करने की सदारती हुक्म पर गौर करने के लिए फुल बेंच तश्कील दिया। 15 सितंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी दरख्वास्त हुकूमत की इस यकीन दहाने पर निमटा दी कि हुकूमत जजों की तादाद में कमी का नोटिफिकेशन वापस लेगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि जजों की तादाद का तायुन पार्लियामेंट करेगी। ताहम 24 सितंबर को हुकूमत ने जजों की तकरीरी के मामले पर चीफ जस्टिस की सिफारिशात पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। 24 अक्टूबर 1997 को क्वेटा में चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसे चीफ जस्टिस कमेटी कहा गया, का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तय पाया कि हुकूमत न सिर्फ आला अदालतों में जजों की तकरीरियों के लिए चीफ जस्टिस साहिबान की सिफारिशात पर फौरी अमल करे, बल्कि तादाद भी बढ़ाई जाए। नीज ये कि जजेस केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में होना चाहिए, लेकिन जब हुकूमत ने चीफ जस्टिस की बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकन्नना और इंतजामिया अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, जबकि वजीर आजम ने कहा कि अदलिया को मुकन्नना की हैसियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने जितने जज मांगे हैं वो दिए जाएंगे। इस तरह हुकूमत और अदलिया के माबैन तनाजा शुरू हो गया। 10 अक्टूबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस अजमल मियाँ ने पहली मरतबा खुलकर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से इख्तलाफ करते हुए कहा कि उन्होंने जजों की तादाद 17 रखने के लिए हुकूमत को लिखे गए खत के बारे में अपने साथियों को एतमाद में नहीं लिया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह उन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर थे, चुनाचा वो अपना दौरा मुख्तसर करके कराची पहुंच गए। अपने खिलाफ तलब शुदा फुल कोर्ट इजलास मनसूख कर दिया, जिस पर 9 जजों ने फुल कोर्ट की मनसूखी पर नापसंदीदगी का इजहार किया। 17 अक्टूबर को जस्टिस सईदुज्जमान ने सदर को खत लिखा कि चीफ जस्टिस सीनियोरिटी के उसूलों पर पूरा नहीं उतरते और जजों की अक्सरियत इनसे इख्तलाफ करती है। 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 14वीं आईनी तरमीम मुअत्तल कर दी, जिससे अरकान पार्लियामेंट को अपनी जमात से पार्लियामेंट के अंदर इख्तलाफ करने का हक हासिल हो गया। वजीर आजम ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग की लानत फिर से शुरू हो जाएगी। 31 अक्टूबर को वजीर आजम ने जजों की तकरीरी से मुतालिक चीफ जस्टिस की सिफारिशात तस्लीम कर ली और इस तरह कौमी असम्बली ने जजों की तादाद 17 मुकर्रर कर दी। पार्लियामेंट ने इस बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। 18 नवंबर को पार्लियामेंट ने एक बिल की मंजूरी दी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ही के बेंच के फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच में अपील का हक तौहीन अदालत के मुकदमे में मुल्जिम को दिया गया। एक मजीद तरमीम लाने का फैसला किया गया, जिसके तहत पार्लियामेंट जजों का मुआवजा कर सकेगी। मस्कूरा वाला बिल सदर को दस्तखतों के लिए भेजा गया। 20 नवंबर को तौहीन अदालत तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और सदर को दस्तखत ना करने का हुक्म दिया। 26 नवंबर को सदर ने जस्टिस अजमल मियां को चीफ जस्टिस बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी असना में क्वेटा बेंच के चीफ जस्टिस की तकरीरी को के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया, लेकिन जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया। 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हुआ और चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाए गए। 29-30 मई को सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग कॉज लिस्टें जारी की गईं। 2 दिसंबर को जस्टिस बेंच ने असेंबली तोड़ने का सदारती इख्तियार 8वीं तरमीम को बहाल कर दिया। उसी रोज जस्टिस सईदुज्जमान ने इस हुक्म को मअत्तल कर दिया। 3 दिसंबर को जस्टिस अजमल मियाँ ने कायम मुकाम का ओहदा संभाला और जस्टिस सज्जाद अली शाह 3 हफ्ते की रुख्सत पर चले गए। जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफा। 1998 को जनरल जहांगीर करामत ने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फौजी अदालतें खत्म करने का फैसला। 17 फरवरी 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को गैर आईनी करार दे दिया। इस जिम्मे में 9 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मुत्तफिका तौर पर करार दिया कि फौजी अदालतों के क्याम के लिए जारी किया गया ऑर्डिनेंस 12 ऑफ 1998 गैर कानूनी इख्तियार के बगैर जारी किया गया था और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। फौजी अदालतों ने मुख्तलिफ मुकदमात में जो सजाएं सुनाई और जिन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था कलदम करार दी जाती हैं, और ऐसे तमाम मुकदमात पहले से कायम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुंतकिल किए जाएं। अदालत ने मजीद करार दिया कि फौजी अदालतों की तरफ से सुनाई जाने वाली जिन सजाओं पर अमल दरामद हो चुका है उन्हें माजी का बंद बाप समझा जाए। शादी ब्याह पर फजूल खर्चियों पर पाबंदी। सदर पाकिस्तान ने 10 मार्च 1997 को एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसकी कौमी असम्बली ने 8 मई 1997 को मंजूरी दी। इस बिल के तहत शादी ब्याह की तकरीबात में खानों पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिदमत कमेटियों का क्याम। 13 अप्रैल 1998 को हुकूमत ने अवामी मसाइल मकामी सतह पर हल करने के लिए मुल्क भर में 428 खिदमत कमेटियां कायम करने का ऐलान किया। इन कमेटियों ने 17 अप्रैल से काम शुरू कर दिया। एटमी धमाके। 11 मई 1998 को भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। इन धमाकों के नतीजे में पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया की 7वीं एटमी कुवत बन गया बल्कि इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुवत बनकर उभरा। नीज इसने भारत की एटमी बर्तरी के गुरूर को भी खाक में मिला दिया। मालाकंड में अदालती निजाम। 16 जनवरी 1999 को गवर्नर सरहद आरिफ बंगश ने मालाकंड और कोहिस्तान के अजला में एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसके तहत इन अजला में शरई निजाम अदल के जाब्तों और शरई ऑर्डिनेंस का निजाम शरई निजाम का ऑर्डिनेंस 1999 जारी किया गया। नए निजाम के तहत इन इलाकों में काजी कोर्ट्स कायम होंगी और काजी उलमाए दीन के मशवरों पर फैसले फैसले करेंगे। इज्तमाई आबरू रेजी के मुर्तकिब अफराद के लिए सजाए मौत। 12 अप्रैल 1997 को यह बिल इत्तफाक राय से मंजूर किया गया जिसमें इज्तमाई आबरू रेजी के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत तजवीज की गई थी। इसे जना हदूद के ऑर्डिनेंस मजरिया 1997 में तरमीम के बिल का नाम दिया गया। क़िसास और दियत के कानून की मंजूरी। 17 अप्रैल 1998 को कौमी असम्बली ने क़िसास और दियत के कानून की मंजूरी दी। एहतसाब बिल। 29 मई 1997 को एहतसाब बिल 1997 की मंजूरी दी गई। इस बिल में तमाम ओहदों पर तैनात अफराद का एहतसाब करने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी। वजीर आजम नवाज शरीफ और फौज के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब नवाज शरीफ ने कारगिल से फौजों की वापसी का ऐलान किया। उन्होंने हालात को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन इख्तलाफात की खलीज बढ़ती गई। आखिरकार नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके ओहदे से बरतरफ करके जनरल जियाउद्दीन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑर्डर जारी कर दिए। उसी दिन जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे। जनरल मुशर्रफ को अपनी बरतरफी अच्छी न लगी। उन्होंने फौज के दीगर कमांडरों से मिलकर मुल्क का तमाम कंट्रोल संभाल लिया। नवाज शरीफ और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हुकूमत बरतरफ कर दी। नवाज शरीफ की हुकूमत 12 अक्टूबर 1999 को बरतरफ कर दी गई और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला। 20 जून 2001 को सदर रफीक तारड़ को उनके ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी जगह सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। वो 14 अगस्त 1999 ता 19 जून 2001 तक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, जबकि 20 जून 2001 ता 18 अगस्त 2008 तक मुल्क के सदर रहे। 14 अगस्त 2000 को मकामी हुकूमतों के नए निज़ाम का इजरा किया। इस नए निज़ाम के तहत दिसंबर 2000 और जनवरी 2001 में मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद हुए। 30 अप्रैल 2002 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ओहदे की मुद्दत में 5 साल की तौसी के लिए रेफरेंडम करवाया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अदालती हुक्म के मुताबिक मुल्क में अक्टूबर 2002 में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया। इसके लिए 10 अक्टूबर 2002 की तारीख मुकर्रर हुई। 10 अक्टूबर 2002 को मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ ने मामूली अक्सरियत हासिल की और मीर जफरुल्लाह जमाली ने मुल्क के नए वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाया। ये सफा नंबर 87 है। पार्ट नंबर 8 यहाँ मुकम्मल होता है।